आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी विपदा का संहार भाग 5। कहानी में अभी तक आपने सुना कि मशहूर वैज्ञानिक देव कुमार बाबू की बेटी का कत्ल हो जाता है। उनके बेटे के कहने पर ब्योमकेश छानबीन कर रहा होता है कि तभी सुकुमार बाबू आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से ब्योमकेश को छानबीन करने से मना कर देते हैं। ब्योमकेश घर वापस आ जाता है। अब आगे 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। ब्योमकेश पहले जैसी मुद्रा में लौट गया था। सुबह अखबार पढ़ता, खिड़की से खाली आंखों से देखा करता, शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता रहता। बीरेन बाबू का भी आना जाना नहीं हुआ, इसलिए हमें पता भी नहीं कि केस में कितनी प्रगति हुई है। बस एक ही आगंतुक था, हाबुल। 2-3 रोज में वो आकर बैठ जाता और सोनी सोनी उदास आंखों से सबको देखता रहता। ब्योमकेश ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या ना कहा, पर उसकी सोनी आंखों में अंतर नहीं आया। हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते रहने में ही दे जाता। शायद गम के सैलाब ने उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। वो हमें एक एक करके देखता और चुपचाप दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतर जाता। वो अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी कंकश हो गया है। आखिरकार एक दिन आया और वो गहरी सांस लेकर बोला,
पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है।
मैंने अनुमान लगाया कि देव कुमार बाबू शोकाकुल वातावरण से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं। उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया है। उस दिन हाबुल के जाने के बाद बीरेन बाबू का आगमन हुआ। उनके चेहरे से साफ था कि केस में वो अधिक बढ़ नहीं पाए। ब्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई। ब्योमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा, तो कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लेकर बीरेन बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा,
कोई भी प्रगति नहीं किसी भी ओर, कुछ नहीं मिल पाया है अभी तक। सबूत तो छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही है। अलबत्ता मुझे विश्वास जरूर हो गया है कि यह रहस्य बहुत ही कहीं गहराई में छुपा है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूं, उतना ही विश्वास गहराता जा रहा है।
ब्योमकेश ने पूछा, मौत के कारण की खोज में नया कुछ पता लगा? बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा,
मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे, पर मुझे लगता है उनके पास एक थ्योरी है। उनका अनुमान है कि मौत किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयाघात के कारण हो सकती है। उन्होंने ये सब साफ रूप से नहीं कहा, लेकिन लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है।
ब्योमकेश ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आपने उन्हें बताया कि मौत चूल्हा सुलगाने के समय हुई है?
हाँ।
कुछ मिनट और चिंतन के बाद ब्योमकेश ने कहा,
चलिए ये तो ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आपने डॉक्टर रुद्रा के बारे में पता किया? हाँ, जहां तक मुझे पता चला है कि वो व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। अफवाह तो ये भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनिस के अनेक रोगियों का सफाया तक कर दिया है। लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सही है कि देव कुमार बाबू की लड़की और डॉक्टर रुद्रा के लड़के की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर रुद्रा ने दहेज में 10,000 रुपए की मांग रख दी, जिसे देव कुमार बाबू ने पैसा ना होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन डॉक्टर रुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है, उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच ये दुर्घटना हो गई, रेखा एकाएक मर गई। इसके बाद से मुझे पता लगा है कि लड़के ने घर छोड़ दिया है। उसका विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। मन्मथ के घर छोड़ देने की खबर नहीं थी, शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थी।
जब बीरेन बाबू चुप हो गए तो ब्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देव कुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या कुछ पता किया?
हाँ, पता किया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई उधार वगैरह नहीं है, पर 10 से 12 हजार एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। रुपए पैसों के मामले में ज्यादा परवाह नहीं करते, दूसरे व्यवहारिक भी कम है, हालांकि कॉलेज से 800 रुपए का खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च होता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वो भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज्यादा कुछ बच नहीं पाता।
ब्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा, 50,000 रुपए? ये तो, और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम है?
उनके अकेले नहीं, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है। ये बीमा उन्होंने पिछले साल ही करवाया है, उनकी दूसरी शादी है। यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो बेचारी विधवा बेसहारा ना हो, मेरे विचार से इसीलिए उन्होंने संयुक्त बीमा कराया है। बच्चों को इसमें से कोई भाग नहीं मिलेगा।
अच्छा, और कुछ?
और क्या, मैंने हाबुल पर भी नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया है, शायद उससे ही कुछ नया पता लग जाए। लड़का तो जैसे पागल हो गया है, उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है, दिन भर सड़कों को नापता फिरता है, कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठा रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है।
मैंने देखा एकाएक ब्योमकेश आलस को छोड़ चपल हो गया। इतने दिनों के बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि उसे जरूर कोई नया आभास हुआ है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं समझा कि शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन ब्योमकेश अपने चेहरे पर प्रत्यक्षता कुछ प्रकट न करते हुए अपने पहले अंदाज में ही बोला, हाबुल को तो छोड़ दिया जाए, क्या आप लौटकर पुलिस थाने जाएंगे? है ना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। बीरेन बाबू को ब्योमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्योमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर कौंधने लगी। मैं पूछने ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस तरह विदा कर दिया, तभी देखा कि वो रुक गया। उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा, चलो जरा घूम कर आते हैं, यहां मेरा दम घुट रहा है। हम दोनों बाहर निकल आए। ब्योमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी, वो उसके व्यवहार में शामिल था। कोई काम ना रहने पर चुपचाप कोने में बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था। उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार ब्योमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तैयार हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम चलने लगे, मेरी खुशी डूबने लगी। ब्योमकेश की चाल बहुत तेज थी, वो इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते में लोगों से टकराने लगा। मैंने उससे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा, पर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि भीड़ में कभी वो वृद्ध व्यक्ति के पांव पर चढ़ जाता तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता, जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका ये पागलपन नहीं देखा था। मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कुछ ऐसा सूत्र मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसके मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे, और इस तरह रास्ते में लोगों की गालियां और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से अटा पड़ा था, उसकी हंसी, ऊंची आवाजों में बातें, नोक झोंक। मैं मौका देखकर ब्योमकेश को बाहों से पकड़कर एक कोने में ले गया। चौक के बीचों बीच तालाब था जिसके दोनों ओर से लोगों का हुजूम जा रहा था। हम लोग एक और रेले में मिल गए, इसमें टकराने की गुंजाइश कम थी। ब्योमकेश के चेहरे पर शिकन ज्यों की त्यों थी और उसे जैसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। बार बार उसका शॉल कंधों से खिसक रहा था, लेकिन उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैं बड़ी देर से यही सोच रहा था कि आखिर बीरेन बाबू और ब्योमकेश के वार्तालाप में ऐसा क्या था जिसने ब्योमकेश के दिमाग को पहले गियर में शिफ्ट कर दिया और पंजाब मेल की तरह भागने लग गया। क्या रेखा के रहस्य का सूत्र उसे मिल गया है? लगभग आधे घंटे चलने के बाद ब्योमकेश फिर अपनी चेतन अवस्था में लौट आया। उसने मेरी ओर देखकर कहा, देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं, है ना? मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। वे नहीं जा सकते, उन्हें, ब्योमकेश आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा। मैंने देखा कि कॉर्नर के एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है, वो जोर जोर से बोले जा रहे थे। जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वो गर्दन झुकाकर उसी ओर देखकर जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ है। उनके चेहरों से लग रहा था कि वहां कोई असाधारण घटना घटी है। वहां पहुंचकर ब्योमकेश भीड़ में घुस गया। उसने पूछा, मामला क्या है? एक युवक ने उत्तर दिया,
मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया है।
ब्योमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है, जैसे कि सो गया हो। उसका सिर सीने की ओर लटका था और पैर आगे की ओर थे। उसके होंठों के बीच एक सिगरेट चिपटी हुई थी, पर उसे जलाया नहीं गया था। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी। एक मेडिकल छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और बोला, सांस नहीं है, इसकी तो मौत हो गई। शाम का झुटपुटा हो गया था और भीड़ में साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ब्योमकेश ने मृत युवक की ठोड़ी उठाकर उसका चेहरा देखना चाहा, पर चेहरा देखते ही जैसे करंट लग गया, मेरा दिल भी थक से रह गया। वो सुकुमार बाबू का बेटा हाबुल था। जल्दी ही पुलिस आ गई। हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चले गए। रास्ते में सड़क की रोशनी जल गई थी। तेज कदमों से लौटते वक्त ब्योमकेश दहशत से त्रस्त आवाज में धीरे से बोला, किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया, कितना विभत्स मजाक है। मेरा दिमाग बिल्कुल बुझ चुका था, लेकिन इस शोक के वातावरण में मैं केवल यही कामना कर रहा था कि अगर इस जीवन के परे भी कोई दुनिया है तो हाबुल की प्यारी बहन की आत्मा का मिलन अपने भाई की आत्मा से हो गया होगा। घर पहुंचकर ब्योमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैंने उसको फोन करते हुए सुना। करीब एक घंटे बाद ब्योमकेश अपने कमरे से निकला और थकी हुई आवाज में उसने पुतीराम से चाय लाने को कहा, जिसके बाद वो सिर झुकाए सोचता रहा। मैंने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। 8:30 बजे बीरेन बाबू आ गए। ब्योमकेश ने उनसे पूछा, आप वारंट लेकर आए हैं? बीरेन बाबू ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। कुछ मिनटों में हम लोग देव कुमार बाबू के घर के सामने खड़े थे। कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में।